रख लिया, जैसे लेट करा इंसान एक घुटने के ऊपर अपना पैर रख लेता तो तलवा सामने हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में एक पद्म था, वो इतना चमक करता था रात्रि के समय अगर कमरे में अंधेरे के अंदर उसको नंगा हो जाए पैर कपड़ा उसका, तो इतनी रोशनी करता जैसे 100 वाट का बल्ब होता है, इतनी चमक थी उसमें। तो दिन के समय और तलवे को ऐसे पैर के ऊपर पैर रखे वो लेटे हुए थे एक वृक्ष के नीचे। वो शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का तीर बनवाया था जहर में बुझवा के विषाक्त करवा के उसको लिए हुए फिर रहा था, वो शिकार भी करता था। उस दिन उस शिकारी को कहीं भी कोई शिकार हाथ नहीं आया, ना कोई मृग नहीं मिला, कोई पशु नहीं मिला जंगल में। और दिन के 12:01 बज गया, जिनकी 12:01 बज गया तो उसने सोचा 40 वर्ष के नीचे विश्राम करता हूं, छाया अच्छी है। उस वर्ष की जो टहनियां थी झुरमटे जमीन पर छुई हुई थी, एक तरफ से अंदर प्रवेश करने का रास्ता था, यानी बहुत गहन छाया थी। अब उस शिकारी ने, बालिया नामक शिकारी ने उस वृक्ष की तरफ जाना चाहा, वहां दूर से देखा कि वृक्ष की झुरमटों के अंदर से, उस पेड़ की उन पत्तों के अंदर से कोई चीज चमक रही है। शिकारी ने सोचा ये मृग की आंख है और यहां कोई मृग बैठा है, यदि मैं इधर उधर से देखूंगा उसको जाके पकड़ूंगा तो हो सकता वो भाग ना जा, आज सारा दिन हो गया मुझे भटकते ने, कोई पशु नहीं मिला। उसने आव देखा ना ताव देखा, भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में चमक रहे पद्म को एक मृग की आंख हिरण की आंख जानकर वो विषाक्त तीर मार दिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण के पैर में बहुत असह्य पीड़ा हुई। उसने उन्होंने आवाज लगाई जैसे चोट लगने के बाद प्राणी करता है, मर गया रे किसने क्या कर दिया रे, कौन है कौन है। अब शिकारी ने सोचा भैया तो कोई मनुष्य का लग गया, आदमी का लग गया, तो बहुत बात बिगड़गी। अब वो शीघ्रता से जाकर देखा उसने कि वहां तो द्वारकाधीश मुकुट सहित श्री कृष्ण जी तड़फ रहे हैं। तब उस शिकारी ने, पारधी ने कहा मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे क्षमा कर दो राजन, मेरे से भूल होगी, धोखा हो गया, मुझे नहीं मालूम था आप यहां विराजमान है, मैंने तो ये आपके पैर में चमक रहे पद्म ये चमकेली वस्तु को मृग की आंख जानकर पर वो धोखे से तीर मार दिया, मेरा दोष नहीं है। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई तेरे से कोई धोखा नहीं हुआ, बैठ जा शिकारी, तेरे से कोई धोखा नहीं हुआ, ये तेरा और मेरा कोई पिछला हिसाब किताब था, बराबर हो गया। अब शिकारी कहता प्रभु आप राजा, मैं एक गरीब आदमी जंगल में भरमने भटकने वाला, आपका मेरा के हिसाब किताब था प्रभु, मैं नहीं समझा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्वाप त्रेता युग में तो सुग्रीव का भाई बाली था और मैं रामचंद्र राजा दशरथ के घर जन्म था मेरा, उसमें मैंने भी तुझे धोखा दे करके वृक्ष की ओट लेकर के तेरी जान ली थी भाई, आज मैंने तेरा बदला दे दिया, आज तूने अपना वो टिट फॉर टेट बराबर कर लिया। अब एक काम कर तू यहां से चला जाना, तुझे घट देंगे पांडव आगे तय, और किसी के द्वारा संदेशा भिजवा दे नगरी में के मुझे ऐसे ऐसे तीर लग गया है और पांडवों को बुलवा देंगे। तो कहते हैं पांचों पांडव रथ में बैठ कर आगे, भगवान श्री कृष्ण जी वहां तड़फ रहे थे, अंतिम श्वास गिन रहे थे, वो पांचों वहां पहुंच गए। जब उनकी यह हालत देखी तो भीम अर्जुन ने कहा कि हे भगवान आपकी दुर्दशा किसने की है हमें बता दो, एक बार उसको अभी संवार जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे भाई किसी को कुछ नहीं कहना, हम समर लिए सारे 56 करोड़ यादव लड़के मर चुके हैं, नगरी में कोई पुरुष शेष नहीं है और मेरी भी ये दुशा आप देख ही रहे हो, मेरा अंतिम श्वास है, ये मेरा अपना संस्कार मेरा प्रारब्ध था, ये मेरा पूरा हो लिया, अब मैं आपसे जो आज्ञा देता हूं मुझे अपना गुरु मानते हो तो मेरी अन्य बातों पर विचार कीजिए, जैसा मैं कहता हूं वो अपना कीजिए तो तुम्हारे कल्याणार्थ होगा। युधिष्ठर जी ने कहा प्रभु आप आज्ञा दीजियो, जो भी आप कहोगे हम आपके दास स्वीकार करेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि यहां पुरुष कोई नहीं रहा द्वारका में, सभी स्त्रियों को आप उधर ले जाना, नहीं तो यहां आसपास के लोग इन्हें परेशान करेंगे। दूसरी बात यह है कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें एक उपदेश देता हूं कि तुम पांचों के पांचों राज्य त्याग कर शीघ्र ही अपने शरीर को तप करके समाप्त कर दो, हिमालय में चले जाओ। अब युधिष्ठिर ने पूछा कि जो आज्ञा आपकी प्रभु ऐसा ही होगा, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि हम राज्य त्याग कर हिमालय में किस लिए गलें, किस लिए तप करें, मतलब अपना वो ऐसा अनुष्ठान किस उद्देश्य से आप कह रहे हो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो महाभारत में पाप किए थे, युद्ध जो किया था, वो बंदूकघात तुम्हारे ऊपर बहुत भयंकर है, इसलिए तप करके वहां अपने शरीर को नष्ट कर दो। अब अर्जुन भी फिर सुन रहा था दूसरी बार वही बात श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से, कि पहले गीता ज्ञान देते समय तो भगवान श्री कृष्ण जी, जैसा अर्जुन मान रहा था कि श्री कृष्ण जी गीता जी का ज्ञान देते समय तो कह रहे थे दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कि अर्जुन तो युद्ध कर ले, यदि जीत गया तो विजय प्राप्त कर गया तो पूरी पृथ्वी का शासन भोगेगा, और मर गया यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। और दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू लाभानी को छोड़कर जय पराजय को भूल कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा, तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे, तू नियमत मात्र है। अब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि मैं बड़ा हुआ काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, और ये सब मैंने मार रखे हैं, तू तो नियमत मात्र बन जा। 33वें श्लोक में ऐसा किया कि तू नियमत मात्र बन जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब अर्जुन ने दूसरी बार जब यह बात सुनी, पहली बार तो तब सुनी थी जब अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए कहा था कि तुम्हें पाप युद्ध में किए हुए पाप हानि कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। अब दूसरी बार फिर अर्जुन ने कहा, अर्जुन से को कहा, अर्जुन पर सहन नहीं हुआ। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु वैसे तो आप आज ऐसी स्थिति में है कि मुझे आपसे कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान यदि मैं आज आपसे एक शंका का समाधान नहीं करूंगा तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा, मुझे आज्ञा दो मैं आपसे शंका का समाधान करवाऊं। श्री कृष्ण जी ने कहा शौक से करो। तब श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा कि भगवान आपने गीता जी के ज्ञान देते समय ये बात कही थी कि तू युद्ध कर ले या तो स्वर्ग में जीत गया तो पूरी पृथ्वी का राज्य भोगेगा और युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग में जाएगा, मेरे दोनों हाथों में लड्डू बताए थे हे परमात्मा, अब आप कह रहे हो कि राज्य त्याग करके इस हिमालय में जाकर अपना शरीर नष्ट कर दीजिए, वहां पर तप कीजिए और राज्य को त्याग दीजिए। अब न तो हम पूरी पृथ्वी का राज भोग चुके सके, अब उम्र के हुई है हमारी अभी, और न ही हम युद्ध में मरकर स्वर्ग में जाने योग्य बात बनी, हमारे तो एक हाथ में भी लड्डू ना छोड़े आपने, ये शत्रुता आपने हमारे साथ किस उद्देश्य से की, अब मरते समय कम से कम ने न्यू तो बता दे, तो मित्र होकर हमारा शत्रु किस लिए बना रहा। ऐसे कटु वचन सुनकर युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन तुझे शोभा नहीं देता ऐसे समय में भगवान से ये बातें करनी। अब भगवान अंतिम सांस गिन रहे हैं और तू ऐसे उठपटांग बातें बोल रहा है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर इसको बोलन दे, इसको कहने दे अपने मन की बात, यू ठीक कह रहा है। कहता अर्जुन एक बात मैं सच्ची बताता हूं, अब अंतिम सांस गिनता हूं, मुझे नहीं मालूम, मैंने केत गीता में कहा था, और भाई ये जो कुछ भी कराया है ये किसी और ही परम शक्ति के वश है, वो ना मेरे बस का ना तेरे बस की। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि तू ये कार्य जो हिमालय में जाकर के अपने शरीर को अवश्य अपना तप करके नष्ट कर दीजिए। अब श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कर दिया अंतिम समय में कि अर्जुन ये ना तेरे बस की बात थी ना मेरे बस की, जो भी प्रारंभ में लिखा था ये होना था। और मैंने गीता जी, मुझे नहीं मालूम गीता जी में के मैंने बोला था। दूसरी बात ये कि ये सत्य है श्री कृष्ण जी अब जो अपने एज ए श्री कृष्ण बोल रहे थे वो ठीक कह रहे थे कि भाई जो तुमने युद्ध में पाप किए वही दुख तुम्हें दुखी कर रहा है, वही पाप तुम्हें दुखी कर रहा है। या तो उनकी बात सही थी, बाकी गीता जी में जो ज्ञान दिया वह काल ने दिया था। अब दूसरी बात यह है कि जैसे श्री कृष्ण जी ने संदीपनी और दुर्वासा जी से जो भी कथा कहानी सुनी थी, जो ज्ञान सुना था, उसी के आधार पर वो समाधान बताते थे। श्री कृष्ण जी ने पाप श्राप नष्ट करने का, अर्थात तीन ताप के अंतर्गत ये दुख आते हैं, कोई देवता रुष्ट हो जाना, कोई किसी के द्वारा जंतर मंतर कर देना, किसी के द्वारा श्राप दे देना, ये तीन ताप में आते हैं। इस तीन ताप के कष्ट निवारण के लिए श्री कृष्ण जी ने विधि बताई थी। प्रथम तो यह बताई कि तुम इन सब कपड़ों को और कढ़ाई को जला कर घिसा कर खत्म कर दो, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। लेकिन वो श्राप साप फिर भी नष्ट नहीं हुआ। दुर्वासा जी का जो श्राप था जो साप था वो खत्म नहीं हुआ। उसके बाद फिर यादों को फिर वापस में लड़ने मरने लगे, तब श्री कृष्ण जी ने यही कहा कि ये तुम्हें दुर्वासा का श्राप सेध रहा है, या सही बताई लेकिन समाधान ठीक नहीं है इनका। इनके द्वारा बताई गई विधि से वो तीनों ताप नहीं कट सकते। परमात्मा कहते तुम कौन राम का जपते जापम तात कट ना ये तीनों तापम। तुम जिन भगवानों की, कौन से भगवान की भक्ति कर रहे हो जिनसे तुम्हारे तीन ताप भी नष्ट नहीं हो सकते। तो दूसरी बार जो विधि बताई श्री कृष्ण जी ने कि जमुना में नहाने से, जमुना के जल में स्नान करने से तुम्हारा श्राप नष्ट हो जाएगा। अब वो श्राप तो कटा नहीं, पण वो यादों कट गए, वहां जाकर लड़ मरे। एक तो ये बात समझ लेना कि जो हमें भ्रमित कर रहे हैं कि गंगा में नहाने से दुख पाप कट जाएंगे या जमुना में नहाने से पाप कट जाएंगे, ये जो कहने वाले तो सिंपल मैन है। ये वचन तो श्री कृष्ण जी ने कहे थे यादवों को, अरुण का भी साप ना कटा जमुना के नहाने थे, वहां तो वापस में लड़के और मर गए, नष्ट हो गए। अभी तीन ताप का भी नाम नष्ट, तीन ताप का भी नाश पूर्ण परमात्मा की भक्ति से ही होता है। अब इस कथा से आपको बहुत से उदाहरण मिले हैं। अब फिर और देखिएगा, अब अर्जुन जो है गोपियों को लेकर के इंद्रप्रस्थ की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में वही धनुष था जिसके द्वारा उसने महाभारत में विजय पाई थी। रास्ते में जंगली लोगों ने उन अर्जुन के ऊपर आक्रमण किया, गोपियों को लूट ले, कुछ गोपियों को ले गए, कुछ एक गहने हार उतार कर ले गए और अर्जुन के को पीटा। अर्जुन से वो धनुष भी नहीं चला, जो गांडीव धनुष अर्जुन लिए हुआ था और जिसे महाभारत में पता नहीं कितनी अपनी पराक्रम दिखाया था, और वो ही धनुष उस समय अर्जुन से नहीं चला, हाथ भी ना उठा। तब श्री जब अर्जुन ने कहा कि ये कृष्ण एक नंबर का छलिया था, ये धोखेबाज था, इसने जब युद्ध करवाना था तब तो मुझे शक्ति दे दी, वो पाप करवाने के लिए मैं एक तीर मारू था 20 आदमियों के मां के वो पार हो जावा था, और आज वही अर्जुन वही गांडीव धनुष और ये हाथ भी ना उठते मेरे। यहां परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि ना तो श्री कृष्ण जी धोखेबाज थे ना वो काल थे, ये जो काल है ज्योति नरेंद्र भगवान है जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर शक्ति है जो इस सारे संसार को यहां भ्रमित किए हुए है, ये धोखेबाज है और वही यह सब क्रिया करा रहा है। वो ना विष्णु के वश है ना शिव के वश ना ब्रह्मा जी के वश, वो केवल पूर्ण परमात्मा जो है से ऊपर की परम शक्ति है, परम अक्षर ब्रह्म, उसी के दाब में ये रहता है, उसी के अंतर्गत है, उसकी साधना करने से ये काल जीव से दूर रहता है, फिर काल का प्रभाव इस पर नहीं होता। अब ये पांचों जब ये यज्ञ नहीं बजी, जब शंख नहीं बजा और यज्ञ अधूरी रह गई, भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी से कहा कि ये जितने भी ऋषि महर्षि और ये सिद्ध बैठे हैं ये कोई भी सत साधना युक्त नहीं है, और ये सब पशु जूनि के प्राणी हैं। इस बात को सुनकर युधिष्ठिर के मन में शंका होगी तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे भगवान, ये ऐसे ऐसे महापुरुष महर्षि ये दुर्वासा जैसे और वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र भारद्वाज जैसे महापुरुष, और आप इनको कहते हैं ये पशु जूनी में जाएंगे, तो श्री कृष्ण जी ने कहा क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है प्रभु कि मेरी आपकी बकहो और मुझे विश्वास ना हो, लेकिन मेरी बुद्धि संकीर्ण है, छोटी बुद्धि का आदमी हूं, मेरी समझ में ना आई। तब श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ को ऐसे किया, वो बैठे थे मंडलेश्वर सारे, ऐसे घुमा दिया और कहा देख युधिष्ठिर, जो आसनों पर बैठे थे वो कोई तो रीछ बना खड़ा है, कोई गधा कोई घोड़ा कोई बिच्छू कोई सांप कोई कीट कोई पतंग कोई कीड़ा, कहते हैं आने वाले जन्म इनके ये होंगे। अब उस देखकर लीला को युधिष्ठिर ने कहा प्रभु ये लीला अपनी खत्म करो, मुझसे देखी नहीं जाती, इनकी ये हालत देखी नहीं जा रही। श्री कृष्ण जी ने कहा युधिष्ठिर ये लीला नहीं ये सत्य है। अब क्या बताते हैं, आप विष्णु पुराण को पढ़कर देखना, रात्रि के समय दिखाऊंगा आपको, उसमें देखना श्री वशिष्ठ जी श्री विश्वामित्र जी ये प्रारंभ करते हैं व्याख्याओं को ब्रह्म से और आके इष्ट मान लेते हैं विष्णु जी को, सतोगुण भगवान विष्णु को, कोई मान लेता है श्री शंकर भगवान को तमोगुण को, और उनको इष्ट मान करके ये साधना करते हैं, वेदों के तो मंत्र बोलें और पूजा करें विष्णु और शिव जी की। इसलिए परमात्मा क्या बताते हैं, वेद पढ़ने पर भेद न जाने ये बाचे पुराण 18, जड़ को अंधे पत्ते खुआम भूल गए सृजन हारा। वेद पढ़े पर भेद न जाने और बाचे पुराण 18, और फिर भी ना वेदों को भी पढ़ते हैं उसका निष्कर्ष इनके पास नहीं है। वेदों में लिखा है कि ब्रह्म साधना करनी चाहिए, उसके अतिरिक्त जो पूजा करते हैं आन उपासना कहलाती है, ब्रह्मा रजगुण सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी की पूजा को करने वालों को भी मूर्ख और पाप आत्मा कहा है, दुष्कर्म करने वाले गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति भी ना करते। गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12, 13, 14 और 15 में यह स्पष्ट प्रमाण किया है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं ये जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं ये मेरे से ही हो रहे हैं, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में, मैं इनसे बाहर हूं, ये मुझ में नहीं है। अब तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे से ही हो रहा है। रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का। इसके अध्याय नंबर 7 में आपको ये 3 मंत्र पढ़ाऊंगा, 4 अध्याय नंबर 7 का, इधर आइए या नीचे 12 में लिखा है, ये नीचे देखना। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजगुण से और तमगुण से होने वाले भाव, उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं इनमें और वे मुझ में नहीं हैं। अब क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता? गीता ज्ञानदाता कौन है? काल भगवान। ये कह रहा है कि जो रजगुण से होने वाले भाव, सतगुण से, तमगुण से, रजगुण से जीवों की उत्पत्ति यानी विषय वासना प्रेरित करके संतान उत्पत्ति करवाना, और सतगुण से सतीथि बनाए रखना विष्णु जी से, और तमोगुण भगवान शंकर से संहार कराना, ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे ही कारण है, क्योंकि काल को 1,00,000 जीव प्रतिदिन खाने हैं, उसको श्राप लग गया है, उस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों को ये ड्यूटी दे रखी है कि रजगुण ब्रह्मा के अंदर एक ऐसी शक्ति है, उस शक्ति की जो की रेंज है वो तीनों लोकों में काम कर रही है। जैसे एक नगर में 3 कंपनियां के टावर हों, उन तीनों की रेंज वहां पर काम कर रही होती है, तो उनका अगर एक व्यक्ति ने तीनों के कनेक्शन दे रखे हैं तो तीनों ही कार्ड उसके काम कर रहे हैं। इसी प्रकार हमने सारे हमारे कार्ड भी सारे फिट कर रखे हैं काल ने, और टावर भी ये तीनों ला रखे हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की जो शक्ति है, रजगुण और सतगुण तमगुण, इनकी जो शक्ति निकल रही है ये हमारे को प्रभावित कर रही है, हमारे ऊपर असर कर रही है, सभी प्राणियों पर, जिस कारण से संतान उत्पत्ति करते हैं, फिर मोह ममता से उनका पालन जो ना अपना प्रेम प्यार बनाए रखते हैं, और शंकर जी हमें मार देते हैं। तो गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है ये मैं ही उसका निमित्त हूं, तो लेकिन मैं इनमें नहीं हूं, ये इनसे बाहर 21वें ब्रह्मंड में रहता है। आगे देखो फिर क्या कहता है गीता ज्ञान दाता, इसी गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 13 में, 7 ये नीचे आइए, श्लोक 13 पीछे कर लो ऐसे। अब देखना ये क्या है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, तामस, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इससे सिद्ध है कि इन तीनों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी से अलग कोई और भगवान है, यानी वो जो गीता बोल रहा है। आगे देखिएगा अब 14 में क्या कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी द्वारा ये क्रियाएं जो हो रही है ये बड़ी दुस्तर है, यानी बहुत खतरनाक है। जो पुरुष मुझको ही बजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर जो ब्रह्म साधना करते हैं इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात वो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं। आगे देखना, पंद्रहवें में कमाल कर दिया। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच है, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अपुण्यात्मा तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये कहते हैं कि जो इन तीनों गुणों तक ही सीमित है इनसे अक्षीणिक लाभ मिल रहा है और फिर जन्म मृत्यु 84 लाख योनियां इनको बहुत ज्यादा भोगनी पड़ती हैं। इनसे ऊपर जो अन्य साधना करने को तैयार नहीं है उस जिनका इन तीनों गुणों के त्रिगुणमयी माया के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना बजते। अब इसी गीता जय 7 के 21 से 23 को और पढ़ कर देखिएगा, 20 से 23 तक ये देखिएगा, अध्याय नंबर 7 और मंत्र नंबर 20 देखिए नीचे। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं, गीता ज्ञान दाता से अलग जो और पूजाएं करते हैं तीनों गुणों की रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु को पूजते हैं, अन्य देवताओं को पूजते हैं। नीचे देखिए, और जो जो काम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। फिर देखना, यह कमाल कर दिया। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजन करता है, वह उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता। आगे देखना, अब इसमें सबका निर्णय दे दिया, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब इसमें स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म की साधना करने के अतिरिक्त जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं तो वो कहते हैं कि जैसे तुम अन्य देवताओं की पूजा करते हैं ना, वो पूजते रहे हैं भगवान जैसे हम कोई भी पूजा करा करते, किसी भी प्रकार से हनुमान जी का व्रत रखते थे, कोई प्रसाद बांटा करते, वो पूजा तो हम कर रहे थे भगवान की, प्रवाह भगवान की थी को ना, और वो जिसके जिसकी हम पूजा करते थे उनमें थोड़ा थोड़ी शक्ति थी, वो अस्थाई लाभ हमें दे दिया करते थे, मोक्ष नहीं था। इस कारण से यह कहा कि जो बेशक से दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं तो वो भी लाभ, ब्रह्म कहता मैंने ही उन देवताओं को दे रखा है और उसी के कारण वो थोड़ा बहुत राह तुम्हें दे देते हैं, लेकिन उन अल्प बुद्धि वालों का है, उन मंद बुद्धि वाले मूर्खों की वो पूजाएं अन्य देवताओं की पूजा गलत है। अब यहां देखिए, 9वें अध्याय के 20-21-23 में ये देखिएगा, पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 9 और नीचे देखिएगा 20 में, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम त्रिविधा, तीनों वेदों में विधान किए सकाम कर्मों को करने वाले सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। आगे देखना, अब ये गीता ज्ञान दाता कह रहा, जो वेदों के पढ़ने वाले भी मोक्ष नहीं है, तीनों वेदों के पढ़ने वाले भी उसके अनुसार साधना करने वाले भी वो ब्रह्म लोक तक जाते हैं, वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुनः क्षीण होने पर भी मृतलोक में आते हैं। अब ये सभी देवता आगे लिखो, फिर 23 में हो गया, फिर 24 देखिए, हाँ फिर इसमें लिखा, अब ये 23 नंबर हो रहेगा। हे अर्जुन, यदि श्रद्धा से युक्त सकाम भक्त दूसरे देवताओं को भी पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, अविधि पूर्वक है। कहने का भाव ये है कि जैसे वेदों के की जो वेदों में वर्णित विधि के अनुसार जो साधना करते हैं और फिर वो इष्ट मान लेते विष्णु जी को, शिव जी को, किसी को भी, वो पूजा तो मेरी वो करते रहे ब्रह्म मान कर, लेकिन कर रहे हैं वो गलत, वो अविधि पूर्वक कर रहे हैं, वो पूजा तो मेरी ये करना चाह रहे हैं पर वो गलत है उनकी। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं उनको न कोई लाभ होता है ना उनकी कोई गति होती है, अर्थात व्यर्थ है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 16 का मंत्र नंबर 23, ये देखिएगा नीचे इधर, हाँ मंत्र नंबर 23 ये वाला, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न ही सुख को ही, अर्थात व्यर्थ है। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करना अविधि पूर्वक, वो अविधि पूर्वक है। तो इस प्रकार अब क्या बताना चाहते हैं कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा ये ऋषि जी कराया करते थे और वही ऋषि महर्षि की पदवी पाकर वह मंडप में विराजमान थे, इस कारण से उनसे लाभ कुछ ना हुआ। वो स्वयं भी 84 लाख योनिया में जाएंगे। स्वर्ण नर मुनि जन 33 करोड़ी ये बंदे सभी निरंजन डोरी, ये सभी काल की डोर का बंद रहे हैं, ये भी जन्म मरण आवागमन के अंदर है, ये आपके पवित्र सदग्रंथ गीता जी ने प्रमाणित कर दिया। अब आपको ये प्रमाणित किया जाएगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तब आपका विश्वास दृढ़ होगा कि सचमुच गीता जी का ज्ञान ओके है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये सांकेतिक है। सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना के गीता जी का ज्ञान किसने बोला था, प्रमाणित हुआ कि श्री कृष्ण जी के शरीर में ब्रह्म अर्थात छर पुरुष जिसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं, जो काल भी कहलाता है, उसने प्रेतवत प्रवेश करके और गीता जी का ज्ञान बोला। आपने ये भी देखा कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 में 12 से लेकर 12 13 14 15 और 20 21 22 23 इन श्लोकों में आपने अपनी आंखों से पवित्र गीता जी को पढ़ा इस प्रोजेक्टर के माध्यम से। उसमें लिखा है कि गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि जो प्राणी तीनों गुणों की पूजा करते हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और उनसे वो अन्य देवताओं में आते हैं, अन्य देवता उनसे मिलने वाले अक्षणिक सुख पर ही वे आधारित हैं, उनको कितना समझाने की चेष्टा करे वो नहीं मानते, उनका ज्ञान उन्हीं देवताओं की रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की महिमा के ऊपर ही आधारित है। उन्हीं की महिमा सुनकर के वो उसी उन्हीं के ऊपर आधारित है, उन्हीं की पूजा में लीन रहते हैं, वो अन्य ज्ञान सुनने को तैयार नहीं। उनके विषय में कहा कि जिन त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया वो राक्षस बुद्धि को धारण किए हुए, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना बजते, यानी गीता ज्ञान दाता कहता है वो मेरी भी भक्ति ना करते। अब हमने अभी तक जो ज्ञान सुना था, क्योंकि इस दास का जन्म भी पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, पवित्र हिंदू धर्म के शास्त्रों से भी हम परिचित नहीं थे, और जिन संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया वो हमारे सदग्रंथों के विपरीत दे रखा था। हमारे को बता रखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक हैं, और इन्हीं की भक्ति से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। जबकि इन भगवानों के जीवन चरित्र में लिखा हुआ है ये नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये केवल एक विभाग, एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री यानी मालिक हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी, इसलिए ये तीनों भी गुण कहलाते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और प्रकृति अर्थात दुर्गा, शेरा वाली अष्टंगी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, और ज्योति निरंजन छरपुरुष जिसने गीता जी का ज्ञान कहा है वो काल ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं। अब पुण्यात्माओं, आपको ये सिद्ध करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। सर्वप्रथम आपको, और साथ में यह भी प्रमाण करना चाहूंगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। अब देखिएगा, श्री शिव पुराण देखिएगा, श्री शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, नीचे देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, गीता प्रेस गोरखपुर, और इनके अनुवादक कौन है, संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, और ये कहां से छपा है यहां देखिएगा, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता संस्थान, कोलकाता संस्थान। अब इसके ये अध्याय नंबर 5 यहां समाप्त हो जाता है। अब हम अध्याय 6 रुद्र संहिता, रुद्र संहिता अध्याय 6 प्रश्न नंबर 99 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। इसमें दो बातें सिद्ध होंगी, एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति और साथ में ये गुण। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों की के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोकों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिवतव का मैं तुमसे वर्णन करता हूं। शिवतव का रूप बड़ा ही उत्कृष्ट है और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। देखना, प्रधान उस समय सत तत् सद ब्रह्म इस स्तुति से सत सुना जाता है, एकमात्र ही शेष था। ऊपर देखें, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। नीचे देखें, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उसमें एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, अब देखना, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं, पराशक्ति को भी कहते हैं, और माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, अंबिका दुर्गा, उसी को प्रकृति, ये याद रखना, प्रकृति शब्द ये आपको गीता जी के अनुवाद में काम आवेगा, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ओए होए, तीनों देवताओं की माता, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी की माता वो दुर्गा है। नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। नीचे देखो, ये भी स्पष्ट हो गया कि वो 8 भुजा वाली देवी है। जो वे सदाशिव हैं, वे परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। आगे देखो इधर, अब ये काल है, ये सदाशिव कौन है, ये काल है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा इनकी माता है। वे अब सदाशिव अर्थात काल के विषय में बताया जा रहा है, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये स्पष्ट भी कर दिया है, सदाशिव को यानी महाशिव को काल भी कहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, ये नाथ नहीं है, गलत प्रिंट है, शक्ति यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे वह परम निर्वाण का या मोक्ष का स्थान है जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव, यानी प्रिया और प्रियतम यानी पति और पत्नी रूप में शक्ति यानी दुर्गा और शिव, ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी प्रानंद रूपणी है, परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने यानी काल और दुर्गा ने, शिव ये काल है और शिवा ये दुर्गा है, परले काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अभी मुक्त क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहां देखना, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा यानी दुर्गा और शिव ये काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्विच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। यहां देखो, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के दसवें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्गुण की अधिकता थी। ये विष्णु की उत्पत्ति होगी शिव शिव यानी काल सदाशिव और दुर्गा से, तथा वह गंभीरता में अथा सागर था। आगे देखो, तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामी मेरे मेरा नाम निश्चित कर कीजिए और काम बताइए, नीचे आइए। शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अपुनात्माओं, अब इस पवित्र शिव महापुराण ने सिद्ध कर दिया कि ये प्रकृति दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की मां है, त्रिदेव जननी, और इसको प्रकृति भी कहते हैं, इसे प्रधान भी कहते हैं। ये आठ भुजा वाली है, इसको शिवा भी कहते हैं, और इस काल रूपी ब्रह्म को सदाशिव भी कहते हैं, ये काल रूपी ब्रह्म भी कहलाता है, इसको महाशिव भी कहते हैं। इन दोनों के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, ये क्लियर हो गया, स्पष्ट हुआ। अब इसी देवी पुराण में ना शिव पुराण में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, यही शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके ये अभी तक आपने ये नीचे देखिएगा, प्रश्न नंबर 102 पर नीचे आइएगा, ये छठा अध्याय समाप्त हो गया, रुद्र संहिता का छठा अध्याय समाप्त हुआ, अब सातवां प्रारंभ होता है। ये रुद्र संहिता प्रश्न नंबर देखना इधर 103 पर, अब यहां देखना इधर, ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, नीचे आओ यहां, तत्पश्चात यानी विष्णु को उत्पन्न करने के पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साम सदाशिव ने पूर्ववत जैसे शिव और शिवा के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई थी, पूर्ववत यत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से उत्पन्न किया। तत्तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूं और किसने इसमें मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किसके लिए मोह में पड़ा हूं, जिसने मुझे उत्पन्न किया उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। अब ब्रह्मा जी का जन्म भी दुर्गा और काल सदाशिव से आपके समक्ष पवित्र शिव पुराण में स्पष्ट हुआ, प्रमाणित हुआ। अब देखना है कि तीनों गुण क्या हैं। ये देखिएगा, यही शिवपुराण इसमें ये आइएगा नीचे प्रश्न नंबर 109 नीचे से शुरू कीजिए, क्योंकि हमने अपने मतलब की बातें पढ़नी है। विष्णु मैं ही सृष्टि पालन, ये दुर्गा ओ, काल बोल रहा है, मैं ही और सार करने वाले रज आदि विद गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु रुद्र नाम से प्रसिद्ध होकर तीन रूप में पृथक पृथक प्रकट होता हूं। यानी एक इन ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग कोई शक्ति है, वो कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध तीनों रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूं। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है, वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। अद्वितीय नित्य अनंत पूर्ण एवं निरंजन परब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्रीहरि भीतर से तमोगुण और बाहर से सतोगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का सहार करने वाले रुद्र भीतर से सत्वगुण और बाहर से तमोगुण धारण करते हैं, तथा त्रिभुवन सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर से और भीतर से रजोगुण। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र यानी शंकर, इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब यहां पर ये चार हो गई, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, शंकर भगवान शिव जी, और ये परंतु शिव इनसे गुणातीत माने गए, ये इनसे भी चौथा है। अब क्या है ये? ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी सिद्ध हुए। अब हम आपको ये देवी भागवत महापुराण, इसको देखिए, हिंदी टीका सहित भाग एक, ये कहां से छपी है? अथ देवी भागवतम भाषा टीकम स महत्तम। इसके प्रकाशक हैं खेमराज श्रीकृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4। इसके तीसरे सकंद में ये देखिएगा, अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। इसमें हम यहां आएंगे, हमने केवल ये देखना है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इसमें अध्याय नंबर, ये देखना यहां पर अध्याय नंबर लिखा है, अध्याय नंबर 5 है तीसरे सकंद का। अध्याय नंबर 5 के यहां देखना, मंत्र नंबर 8 में, 7 खत्म हो गया, 8 में, हे माता, ये शंकर भगवान बोल रहे हैं, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण, सतगुण युक्त किए हैं। इसे सिद्ध हो गया। अभी ये देखना अंग्रेजी, इसकी संस्कृत भी देखें, हे माता, हाँ यहां ये सातवा, यदि दया दर्मना ने सदाम्बिके कथम अहम विहित च, मैंने बना दिया तमोगुण, मुझे किस लिए तमोगुण बना दिया? ये हिंदी अनुवादकर्ता ने थोड़ी सी अपनी अटकल अड़ाई है इसमें, देखिए ऊपर, तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ये नहीं सीधा लिखा कि मुझे किस प्रकार तमोगुण बना दिया। यहां देखना, अब संस्कृत देखेंगे हम, यदि दया दर्मना न सदाम्बिके कथम अहम, किस प्रकार मैं विहित बना दिया च तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, विहित सुविहित किमो सतोगुण हरि, और किस प्रकार भगवान विष्णु को सतोगुण बना दिया, विहुतो माने बना दिया, संभव माने बनाना, कि मुझे आपने रजगुण बना दिया और ब्रह्मा को और मुझे तमगुण बना दिया, ब्रह्मा को रजगुण और विष्णु को सतगुण किस प्रकार बनाया, किस लिए बनाया। अब क्या कहते हैं, यदि तू दयालु है, शंकर भगवान कह रहे हैं, तो मुझे तमोगुण युक्त क्यों कर दिया, मैं तमोगुण क्यों बना दिया जो सबका सहार करता हूं। और ब्रह्मा जी सती थी, या ब्रह्मा जी जो जीव उत्पत्ति करवाता है और विष्णु जी सतीति बनाता है। इससे सिद्ध हो गया है कि तीनों रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब देवी भागवत महापुराण में आपको और दिखाते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। श्री मद देवी भागवत मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और इसके संवादक इसके अनुवाद करता है हनुमान प्रसाद, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी। अब इसमें थोड़ा सा दिखाएंगे आपको, ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम आपके दुर्गा के पुत्र हैं, और ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है। ये देखिएगा, ये देखिएगा तीसरा स्कंद है, तीसरा स्कंद, और यहां भगवान विष्णु कह रहे हैं ये मूल प्रकृति है, दुर्गा के विषय में जानकारी दे रहे हैं विष्णु जी, परम पुरुष के साथ रहती हैं, ये शिव को ही परम पुरुष कह रहे हैं, काल यानी सदा शिव, काल को ब्रह्मांड की रचना करके ये परम पुरुष को दिखाया करती है, परम पुरुष दृष्टा है, ये वे ही दिवांगना हैं जिनके परले वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे, उस समय मैं बालक रूप में था, मुझे पालने से पर ये झुला रही थी, वटवृक्ष के पत्र पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर डेट कर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई है, ये हम सबकी जननी है, अपनी माता है, इनके विषय में मेरी जितनी जानकारी है तथा मैं जो कुछ अनुभव कर चुका हूं वह कहता हूं, सुनो। ये एक और एक से तीन अध्याय में आपने तीसरे सकंद में पढ़ा। अब देखिएगा 123 पृष्ठ पर, तीसरा सकंद ही है और ये 123 पृष्ठ है। यहां क्या बताते हैं, विष्णु जी कह रहे हैं अपनी दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, हे तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु यानी यहां से चले जाना हुआ करता है, केवल तुम नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति नाम दुर्गा का है, ब्रह्मा विष्णु स्वीकार कर रहे हैं कि हम तो नित नहीं है, हमारे जन्म मृत्यु होती है, केवल तुम ही अविनाशी हो, नित माने अविनाशी। ये देखो भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, विष्णु भी तुम्हारे से जन्म हुआ है तो ब्रह्मा भी आपके पुत्र हुए, और मैं तमोगुणी लीला करने वाला, तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो सत साहिब। अब पढ़िए पवित्र गीता जी, कितना आनंद आएगा।